बिग बॉस की नेक्स्ट एपिसोड पेशे खिदमत है। स्यार रंग की कार खासी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। इसके पीछे दो और कारें थी। पहले वाली कार की ड्राइविंग सीट पर डियानो था, जबकि साइड सीट पर मदाम लीजा बैठी हुई थी। अगली सीट पर तीन मुसले आदमी थे। पीछे आने वाली दोनों कारों में भी मुसला अफराद भरे हुए थे। इस इमरान ने आखिर मुझे किस तरह पहचान लिया होगा? वो तो मेरे बारे में इस तरह बातें कर रहा था जैसे वो मुझे सदियों से जानता हो, मदाम लीजा ने होंठ चबाते हुए कहा। यही बात मेरी समझ में भी नहीं आई, डियानो ने सर हिलाते हुए कहा और मदाम लीजा ने होंठ बेच लिए। थोड़ी देर बाद कारें एक रहायशी कॉलोनी में दाखिल हो गईं और फिर डियानो ने कार चौक के करीब रोक दी। अकबी कारें भी रुक गईं। कार रुकते ही मदाम लीजा, डियानो और बाकी साथी नीचे उतर आए, जबकि उकबी कारों से भी 10 अफराद नीचे उतर आए थे। उसी लम्हे एक दरख्त की ओट से एक नौजवान तेज तेज कदम उठाता उनकी तरफ आता दिखाई दिया और वो सब चौंक कर उसे देखने लगे। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन सड़क पर जलने वाली मरकरी लाइटों की वजह से वहां दिन के उजाले का सा समा महसूस हो रहा था। मदाम आप आ गई, इस नौजवान ने करीब आकर मौत बना लहजे में कहा। क्या पोजीशन है इनकी रोफन, मदाम ने सख्त लहजों में पूछा। वो सब कोठी में मौजूद है, इनमें चार मर्द हैं और एक औरत। एक मर्द अभी आधा घंटा पहले आया है, इस नौजवान ने बहुत बना लहजे में जवाब देते हुए कहा। जाओ डियानो, कोठी पर रीड कर दो, पूरी कोठी को ही बमों से उड़ा दो, मैं इनकी कटी फटी लाशें देखना चाहती हूं, मदाम लीजा ने इंतहाई सख्त लहजे में साथ खड़े हुए डियानो से मुखातब होकर कहा। यस मदाम, डियानो ने कहा और उसने बाकी मुसले अफराद को अपने पीछे आने का इशारा किया और फिर वो सब तेज तेज कदम उठाते आगे बढ़ गए, जबकि मदाम लीजा वही कार के करीब ही खड़ी रही। इन्हें अतला देने वाला नौजवान भी उनके साथ था। चंद लम्हों बाद कॉलोनी की फजा खौफनाक धमाकों से गूंज उठी। धमाके काफी दूर और मुसलसल हो रहे थे। यूं महसूस हो रहा था जैसे कॉलोनी पर किसी फौज ने हमला कर दिया हो। रात के वक्त इन खौफनाक धमाकों की वजह से यकलख्त हर तरफ अफरा तफरी सी मच गई और लोग चीखते हुए दौड़कर घरों से निकलकर सड़क पर आने लग गए। मदाम लीजा कार के साथ खामोश खड़ी थी। चंद लम्हों बाद दूर से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और मदाम लीजा चौंक पड़ी और फिर उसने डियानो और उसके साथियों को आते हुए देखा। उसी लम्हे दूर से पुलिस गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। जल्दी करो, कारों में बैठ जाओ, पुलिस आ रही है, मदाम लीजा ने चीखते हुए कहा और उसके साथ ही वो खुद तेजी से अपनी वाली कार में घुस गई। दूसरे लम्हे डियानो उछल कर ड्राइविंग सीट पर बैठा और तीन साथी अकबी सीट पर धम से आठ बैठे। इसके साथ ही डियानो ने एक झटके से कार आगे बढ़ा दी। पुलिस सायरन अभी दूर थे। कार एक झटके से आगे बढ़ी और फिर इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली गई। इनके साथियों की कारें उनके अकब में आ रही थी। क्या हुआ, मदाम लीजा ने होंठ चबाते हुए पूछा। कामयाबी, हमने पूरी कोठी ही उड़ा दी है, डियानो ने जवाब दिया और लीजा ने इस बात में सर हिला दिया। अरे ये नीली कार किसकी है, मुसलसल हमारे पीछे आ रही है, यकलख्त लीजा ने साइड मिरर को देखते हुए कहा, जिसमें से उसके साथियों की दोनों कारों के उकब में आती हुई तीसरी नीले रंग की कार साफ दिखाई दे रही थी। ये रोकन की कार है मदाम, डियानो ने कहा तो मदाम लीजा ने इस बात में सर हिला दिया। इनकी लाशें तो हमें चेक करनी चाहिए थी ताकि मुकम्मल इत्मीनान हो जाता, लीजा ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। हमने चारों तरफ से अचानक कोठी पर बमों की बारिश कर दी और कोठी के पुर्खचे उड़ गए हैं। ऐसी सूरत में उनके बच जाने का कोई सवाल ही बाकी नहीं रह जाता। वैसे रोकन बेहद बाखबर आदमी है, अगर उसने कहा है कि वो लोग अंदर थे तो यकीनन वो अंदर ही होंगे, डियानो ने जवाब देते हुए कहा, हाँ ठीक है, अब चीफ बॉस को मैं बताऊंगी कि जिससे वो खौफजदा था उसे मैंने इतनी आसानी से खत्म कर दिया है, लीजा ने मुसरत भरे लहजे में कहा और डियानो ने असमात में सर हिला दिया। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद कारें एक बड़ी सी इमारत के अंदर दाखिल हो गई। ये उनका हेडक्वार्टर था। डियानो ने कार एक बरामदे के सामने जाकर रोक दी और लीजा कार रुकते ही दरवाजा खोलकर नीचे उतर आए। उसके हुक्म में आने वाली तीनों कारें भी पीछे रुक गई थी और इनमें से लीजा के साथ ही उतरने लग गए थे। नीली कार में से वही नौजवान अकेला उतरा था जिसने इन्हें कोठी के अंदर इमरान और उसके साथियों की मौजूदगी की इतला दी थी। रोकन मेरे साथ आओ, मदाम लीजा ने इस नौजवान को आवाज देते हुए कहा और फिर तेजी से इमारत की अंदरूनी तरफ को मुड़ गई। डियानो भी उसके साथ था। थोड़ी देर बाद वो तीनों एक बड़े कमरे में पहुंच गए। ये सिटिंग रूम था। मदाम लीजा एक कुर्सी पर बैठ गई जबकि डियानो और रोकन दोनों खड़े थे। बैठो डियानो और रोकन, तुम भी बैठो। तुम्हारी वजह से तो आज मुझे इन लोगों के खिलाफ कामयाबी हुई है, लीजा ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया मदाम, रोकर ने मुस्कुराते हुए कहा और मौतबाना अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया, जबकि डियानो भी मुस्कुराता हुआ एक कुर्सी पर बैठ गया था। मैं चाहती हूँ चीफ बॉस को सिर्फ कामयाबी की खबर ना सुनाऊं, बल्कि इन लोगों की कटी फटी लाशें भी उसके सामने रख दूं। और मेरा प्रोग्राम भी यही था कि इनकी लाशें लेकर आऊंगी, लेकिन ना जाने पुलिस कैसे इस कदर जल्दी पहुंच गई, मदाम लीजा ने मुंह बनाते हुए कहा। मदाम, आप अगर उनकी लाशें चीफ बॉस तक भिजवाना चाहती हैं तो इस काम के लिए मैं हाजिर हूं, रोकर ने बड़े बात लहजे में कहा। वो कैसे? मदाम लीजा ने चौंककर पूछा और डियानो भी हैरत से उसे देखने लगा। पुलिस यकीनन ये लाशें ले जाएगी, लेकिन मेरे पास ऐसे वसाइल मौजूद हैं कि इन लाशों को पुलिस से हासिल कर लूं और किसी को इलम भी ना हो, मगर मसला ये है कि इन्हें ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता क्योंकि पुलिस पूरे शहर में उनकी तलाश शुरू कर देगी। इसलिए ये तो हो सकता है कि लाशें पुलिस से हासिल करते ही फौरी तौर पर उन्हें चीफ बॉस तक पहुँचा दिया जाए, रोकर ने जवाब देते हुए कहा। हो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन चीफ बॉस का पता सिर्फ कार्लाइल जानता है और कोई नहीं जानता, क्योंकि कार्लाइल को चीफ बॉस ने अपना नंबर 2 बनाया हुआ है। बहरहाल ऐसा हो सकता है कि तुम वो लाशें यहाँ ले आओ और फिर हम उन्हें लाद कर यहाँ से कार्लाइल के पास ले चलेंगे। चीफ बॉस ने कार्लाइल को यकीनन उसके खास अड्डे का पर ही पबंद कर रखा होगा, मदाम लीजा ने सोचने के से अंदाज में कहा। तुम पहले चीफ से बात तो कर लो, हो सकता है वो लाशें अपने तक पहुंचाने की बात को सिरे से पसंद ही ना करे, डियानो ने पहली बार बात करते हुए कहा। नहीं, चीफ बॉस ने मुझे मना किया था कि मैं इस इमरान और उसके साथियों के चक्कर में मुलव्वस ना हूं, इसलिए बेहतर यही है कि लाशों समेत उससे बात की जाए, मदाम लीजा ने जवाब देते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि इसकी बात का डियानो कोई जवाब देता, अचानक एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर था। चीफ बॉस की कॉल है मदाम, इस नौजवान ने मौतबाना लहजे में कहा तो मदाम लीजा और डियानो दोनों बेइख्तियार चौंक पड़े। ओ दिखाओ मुझे, मदाम लीजा ने तेज लहजे में कहा और इस आदमी के हाथ से झपट कर ट्रांसमीटर ले लिया। ट्रांसमीटर पर एक बल्ब मुसलसल जल बुझ रहा था। मदाम लीजा ने ट्रांसमीटर का बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, चीफ बॉस कॉलिंग ओवर। बटन दबते ही एक भारी और करकश आवाज सुनाई दी। यस चीफ बॉस, लीजा बोल रही हूँ, ओवर, मदाम लीजा ने मौतबाना लहजे में कहा। लीजा, तुम्हारे ग्रुप ने फ्रास्को कॉलोनी की कोठी पर बम बरसाए हैं, क्यों? ओवर। दूसरी तरफ से चीफ बॉस ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और लीजा और डियानो दोनों के चेहरों पर हैरत के तासरात उभर आए। बॉस, आपको कैसे इतनी जल्दी मालूम हो गया? अभी तो हम वहां से वापस आए हैं, ओवर। मदाम लीजा से शायद ना रहा जा सका था, इसलिए इसने पूछ लिया था। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम लोगों की सरगर्मियों से ना वाकिफ रहता हूं? तुम वजह बताओ, क्या था वहां जिसके लिए तुम्हें इस कदर सख्त इंतजाम करना पड़ा? ओवर, चीफ बॉस ने इंतहाई सख्त लहजे में पूछा। बॉस, आपके लिए खुशखबरी है, इस कोठी में पकीशा का अली इमरान और उसके साथी मौजूद थे और मैंने पूरी कोठी ही बमों से उड़ा दी है। इस तरह वो यकीनी तौर पर हलाक हो चुके हैं, ओवर, मदाम लीजा ने कहा। इमरान और उसके साथी, तुम्हें कैसे मालूम हुआ था? ओवर, इस बार चीफ बॉस के लहजे में हैरत थी और मदाम लीजा बेइख्तियार मुस्कुरा दी। बॉस, आपने तो इस इमरान से रब्ता करने से मना कर दिया था, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बात करना चाहती थी। चनाचा मैंने प्रिंसेस जेंट बनकर फोन पर उसे होटल में कॉल किया तो बॉस, वो आदमी वाकई इंतहाई खतरनाक हद तक बाखबर निकला। इसने फौरन पहचान लिया कि मैं प्रिंसेस जेंट नहीं बल्कि मदाम लीजा बोल रही हूँ और हमारे सेक्शन का कोड निशान फ्लाइंग स्पैरो है। इसने बात भी इंतहाई बदतमीजी से की, जिस पर मुझे गुस्सा आ गया। मेरे सेक्शन के अफराद होटल रेनबो में मौजूद थे, चनाचा मैंने इन्हें फौरी तौर पर इमरान और उसके साथियों का के कत्ल का हुक्म दे दिया, लेकिन फिर मुझे इतला मिली कि वो लोग फौरी तौर पर होटल से गायब हो गए हैं। मैंने उनकी तलाश का हुक्म दे दिया, मेरे आदमी रोकर ने इन्हें चेक कर लिया और फिर उनकी निगरानी करते हुए वो फ्रास्को कॉलोनी की इस कोठी तक पहुंच गया जहां ये लोग जाकर रहे थे। चनाचा रोकर ने वहां से मुझे इतला दी तो मैं डियानो और मूसला अफराद को लेकर वहां पहुंची। रोकर ने मुझे बताया कि वो लोग कोठी के अंदर हैं, तो मैंने डियानो को हमले का हुक्म दे दिया और कोठी को बमों से उड़ा दिया और फिर पुलिस के सायरन सुनने के बाद फौरन वहां से चले आए। अब हम प्रोग्राम बना रहे थे कि पुलिस से लाशें हासिल करके कार्लाइल के जरिए आप तक पहुंचाई जाए कि आपकी कार आ गई, मदाम लीजा ने तफसील बताते हुए कहा। तुम इंतहाई अहमक औरत हो मदाम लीजा, जब मैंने तुम्हें मना कर दिया था कि तुमने उनसे कोई रابطہ नहीं रखना तो तुमने इस कदर अहमकाना इकदामात क्यों किए हैं? मैंने उनकी वजह से कार्लाइल जैसे आदमी को भी उसके खास हेडक्वार्टर तक पाबंद कर दिया था, क्योंकि ये लोग हद दर्जा खतरनाक और शातर हैं। जिस कोठी पर तुमने बमों की बारिश की है, इसके अंदर से चिड़िया के बच्चे की लाश भी नहीं मिली। तुम कह रही हो कि उनकी लाशें अंदर होंगी? चीफ बॉस ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है बॉस? रोकन इंतहाई बाअत्माद आदमी है और वो उस वक्त मेरे सामने बैठा है। रीड से पहले इसने मुझे बताया था कि एक औरत और चार मर्द अंदर मौजूद हैं, ओवर, मदाम लीजा ने हैरत भरे लहजे में कहा। पुलिस ने पूरी कोठी चेक की है, वहां कोई लाश नहीं है। रोकन से मैं वाकिफ हूं, वो गलत बयानी करने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि इन्हें तुम्हारी आमद का इलम हो गया और वो बम फायर होने से पहले ही खामोशी से वहां से निकल गए। इससे तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि वो लोग किस कदर खतरनाक हैं। अब तुम ऐसा करो कि फौरी तौर पर खुद भी अंडरग्राउंड हो जाओ, क्योंकि मुझे खतरा है कि वो तुम्हारे जरिए कार्लाइल और फिर कार्लाइल के जरिए मुझ तक ना पहुंच जाए, ओवर, चीफ बॉस ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। यस बॉस, ओवर, मदाम लीजा ने इंतहाई मायूसाना लहजे में कहा और दूसरी तरफ से ओवर एंड आल के अल्फाज सुनते ही इसने बटन ऑफ करके ट्रांसमीटर वापस इस नौजवान की तरफ बढ़ा दिया जिसने वो लाकर मदाम लीजा को दिया था और जो कॉल के दौरान वही खड़ा रहा था। नौजवान ट्रांसमीटर लेकर तेजी से वापस चला गया था। ये कैसे मुमकिन हो गया? इसका मतलब है रोकन, तुमने सही निगरानी नहीं की, यह सब तुम्हारी कोताही का नतीजा है। मदाम लीजा इस नौजवान के बाहर जाने पर कुर्सी पर बैठे हुए रोकन पर उल्ट पड़ी। अगर तुम जैसी औरतें इतनी आसानी से इमरान पर हाथ डाल सकती तो इमरान अब तक कंवारा क्यों फिरता रहा होता? रोकर ने यकलक बदली हुई आवाज में कहा, क्या कौन हो तुम? इमरान, बिल्कुल वही आवाज। मगर मदाम लीजा ने इंतहाई हैरत से चीखते हुए कहा और इमरान का नाम सुनकर डियानो ने, जो उठकर खड़ा हो चुका था, बिजली की सी तेजी से जेब में हाथ डाला, मगर दूसरे लम्हे ठुक की आवाज के साथ ही डयानो चीखता हुआ वापस कुर्सी पर गिरा और फिर कुर्सी समेत उल्टकर पीछे लड़क गया। मदाम लीजा की आंखें हैरत और खौफ से फैलती चली गईं। अब रोकन के हाथ में साइलेंसर लगा रिवॉल्वर साफ दिखाई दे रहा था। तुम वाकई इमरान ओ, मदाम लीजा ने डूबते हुए लहजे में कहा और उसके साथ ही उसकी गर्दन ढलक गई। वो बयक वक्त हैरत और खौफ की शिद्दत से बेहोश हो चुकी थी। इस नावल की नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।